हमारी दुआएं पत्थर को तो पिघला दें, परंतु कब किसकी दुआओं में शक्ति रहेगी? जिनका योग बहुत अच्छा है और
शुभ भावना अच्छा
है, दिल से
शुभ भावना अच्छा,
तो भावनाएं श्रेष्ठ है, बहन की भावना है। और कौन सी शक्ति चाहिए?
प्योरिटी
की शक्ति भी
चाहिए,
प्योरिटी और योग। प्योरिटी का विस्तार बहुत है, किसी का ब्रह्मचर्य बहुत मजबूत हो लेकिन मन में तृष्णाएं हो, असंतोष हो, टकराव हो, तो प्योरिटी का बल बिल्कुल साधारण रह जाएगा। इसलिए प्योरिटी के साथ शुभ भावनाओं का बल, शुभ चिंतन का बल, शुभ चिंतन श्रेष्ठ विचारों का बल, ये हमारी दुआओं को बहुत इफेक्टिव बना देता है, प्रभावशाली। तो दुआएं भी संसार को हमारी ओर से चाहिए। हमारे क्या दो विशेष लक्ष्य चल रहे हैं सबको याद है? व्यर्थ से मुक्ति एक को याद है बस,
निर्भय
दूसरा निर्भय पक्का कर देंगे, रोज रिवाइज करेंगे। निर्भय निर्भय एक ही बात है, तो तीनों एक ही पर्यायवाची बोल रही माता जी, इतनी पढ़ी हुई है। तो हमें व्यर्थ से मुक्त और भय से मुक्त, भय भी बहुत व्यर्थ का कारण बनता है, चिंताओं से मुक्त। तो सभी ध्यान रखेंगे साक्षी भाव, समर्पण भाव और बोलो, तीनों की चर्चा हम करते आते हैं। साक्षी भाव, समर्पण भाव, निष्काम भाव, निष्काम भाव,
समदृष्टि,
बस ये तीन ही, इनमें सब आ जाएगा। साक्षी भाव, समर्पण भाव, निष्काम भाव। निष्काम होना ये बहुत बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी हमारी स्थिति है कि हम कर्म निष्काम भाव से करें। जो समर्पित हैं पहले उन्हें अभ्यास करना है, जो सेवाओं में हैं, क्योंकि जो लौकिक में हैं वो मान लो बिजनेस कर रहे हैं तो क्या संकल्प होंगे? काम नहीं होंगे ना ज्यादा से ज्यादा। उनके लिए निष्काम होने का दूसरा अर्थ होगा। लेकिन हम सब ईश्वरीय सेवा में जो लगे हुए हैं, निष्काम का अर्थ है सेवा के फल की कोई कामना न हो, केवल सेवा करना हमारा कर्तव्य है, केवल सेवा। क्योंकि अगर बहुत सारी कामनाएं रहती हैं तो कहीं निराशा आएगी, उदासी, टकराव होगा। सबसे खतरनाक कामना कौन सी है? हाँ यही है, मान सम्मान की कामना। कोई भी थोड़ी सेवा करके सोचे कि इसके रिटर्न में मुझे सम्मान तो मिले, तो मिल जाएगा, लेकिन क्या समाप्त हो जाएगा? क्या समाप्त हो जाएगा? फल और बल। सेवाओं का बल भी बहुत है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे गृहस्थ में रहने वाले भी कोई भी सेवा करे, तन मन धन की सेवा का बल बहुत है यदि वो निष्काम भाव से की जाए। तो निष्काम एक ऐसा शब्द है, लौकिक में तो आदि श्रीमद् भगवत गीता इसी पर है। किसी ने संन्यास भी कर दिया, त्याग भी कर दिया, गीता में भी है ये बातें, लेकिन वो निष्काम न हुआ तो उसका त्याग और संन्यास भी उसे कोई बल नहीं देता। पिता, क्योंकि दोनों ही किए जाते हैं श्रेष्ठ साधनाओं के लिए, मन को शांत करने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए। परंतु यदि ऐसा नहीं हो रहा है, कामनाएं हैं, तो संन्यास और त्याग भी निष्फल जाता है। तो हम इस पर बहुत ध्यान देंगे, साक्षी भाव पर हमें विशेष चर्चा करनी है। साक्षी भाव का अर्थ है ड्रामा को यूज करके चित्त को शांत करना। बहुत ये ज्ञान हमें ड्रामा का भी मिला है। आत्मा परमात्मा का तो मोटा भी दिखाई देता है, फटाफट मिल गया, लेकिन ड्रामा का ज्ञान अति अति गुरी है। तो आप अनुभव से सुनाएंगे, जो भी अनुभव करते हैं, कौन सी ड्रामा की पॉइंट चित्त को शांत करने में मदद करती है, कौन सी ड्रामा की पॉइंट चित्त को शांत करने में मदद करती है। प्रैक्टिकल अनुभव, नथिंग न्यू, एक
बात,
हर एक का पाठ अपना अपना है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा, और जो होगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है। जो हुआ उसके लिए मन मान ले कि वो अच्छा हुआ, कठिन काम है। पिछले ग्रुप में मैंने सुनाया था, एक छोटी कन्या मेरे पास आई, सेंटर में रहती है, उसके परिवार के 8 लोग एक्सीडेंट में मर गए नजदीक में। अब सोचो इस घटना पर उसकी स्थिति उदास थी, बिल्कुल काम है, बहुत कोशिश करते हैं, खुशी लौट नहीं रही है। 8 बहुत बड़ी संख्या है ना, और वो भी बिल्कुल एक छोटी कन्या जिसमें अभी मैच्योरिटी भी नहीं है, मोह बहुत रहता है। इसको किस दृष्टि से देखेंगे, अच्छा हुआ ये तो कहा भी नहीं जा सकता। क्या शब्द यूज करेंगे इसके लिए? कल पहले भी ऐसा हुआ था, जैसे महाभारत की एक बहुत अच्छी घटना इस संदर्भ में है, जो जानते हैं कि भीष्म के पिता ने गंगा से शादी की थी, और गंगा ने कहा आप मेरे से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। बच्चे हुए 7, 7 को गंगा में बहाई, प्रश्न नहीं पूछ सकता था, नहीं तो चली जाएगी। आपको अभी सुनवा तो पूछ ही लिया, क्यों ऐसा कर रही हो, तो वो रुष्ट होके चली गई, भीष्म को छोड़ गई। बताया वो 7 कौन थे, ये 8 कौन थे? वसु, वसु मतलब देवलोक की कोई आत्माएं, जो किसी के श्राप से जन्म लिया था जिन्होंने, और उनको तत्काल मुक्त करना था। तो देखो एक वो दृष्टि कि वो तत्काल मुक्त होकर वापिस अपनी स्थिति में चले गए, और एक ये स्थिति साथ को माने तो वो दिया फटाफट, वहां थी क्या थी, है सोचने की बात है ना। हर घटना के पीछे कुछ सूक्ष्म बहस भी होते हैं, उनको यदि हम पहचान लेते हैं, उसके लिए बहुत विशाल बुद्धि की आवश्यकता है, तो हम अपने चित्त को शांत रखते हैं। लेकिन जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, इसको इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। सभी ध्यान दें, हम बहुत चर्चा यहाँ करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, अंतर मन की शक्ति की, कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं, सोच लिया। एक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि बाबा ने कहा जो होगा अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, हमारा मन तो मान नहीं रहा, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने कहा है। लेकिन दूसरा है, हमारे विवेक ने स्वीकार कर लिया हो सब कुछ अच्छा है, तो अगर हम बार बार सोचते रहेंगे जो होगा वो अच्छा होगा, तो कुछ खराब होगा ही नहीं। बाबा ने कह दिया, अगर खराब होने वाला भी है वो भी अच्छे में बदल जाएगा, क्योंकि अंतर मन की शक्ति इस तरह काम करेगी। ड्रामा की बात को और आगे बढ़ाएं, सुनाए अनुभव,
बाबा कल्याणकारी है, कल्याणकारी है
तो ड्रामा भी कल्याणकारी है। ये बात हमारे चित्त को शांत करेगी। बहुत अच्छी। और सुनाओ
जो हो रहा है।
हाँ, जो हो रहा है वही सत्य है। तो इसमें आ जाएगी स्थिति नो क्वेश्चन। बहुत बड़ी स्थिति है, नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं। और सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है तो नो कंप्लेंट।
सबका कर्मिक अकाउंट
क्लियर हो रहा है। ये भी एक बहुत सुंदर बात है। परिवारों में भी जहाँ तहाँ कुछ ना कुछ संघर्ष आजकल चलता है, तो सबका कर्मों का खाता समाप्ति की ओर है, कर्ज चुक्त हो रहे हैं। ये बात भी चित्त को शांत करेगी। और बहन बोले पीछे की बना बनाया है तो आगे बोलो, कुछ आगे बोलो, वही नथिंग न्यू। ड्रामा हमें आगे बढ़ाने का साधन है। उसकी कौन सी पॉइंट पॉइंट सोचे आप? हाँ, और बोलो, जिसको अनुभव है बोलो।
सर, बच्चे को ड्रामा पसंद है तो नहीं पसंद है।
हाँ, जब ड्रामा का जो क्रिएटर डायरेक्टर है उसको ही ये पसंद है तो हमें भी इसका हर सीन पसंद। पूरन भाई आ रहा कुछ? सब निर्दोष हैं, क्योंकि सबको पाठ मिला हुआ है। ये बात हमारे चित्त को शांत करती है, इसमें क्षमा भाव भी आ जाता है।
बनी बनाई
बन रही है तो भविष्य की चिंताएं समाप्त होने लगती हैं।
विघ्न एक स्टेपिंग स्टोन है। विघ्न एक स्टेपिंग स्टोन है।
हाँ, विघ्न तो है आगे बढ़ाने वाले। हम ड्रामा की चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम पास्ट के इफेक्ट से मुक्त हो जाएं और भविष्य की चिंताओं से। पास्ट का इफेक्ट छोटी चीज नहीं होता। किसी के ऊपर कुछ गहरा है, गहरा। मैंने देखा, एक माता मेरे पास आई थी अभी, उसको मोह के कारण, तो उसमें बहुत ज्यादा मोह, तो जो कुछ पास में हुआ है वो उससे सहन नहीं होता और वो बार बार उसे याद करके दुखी रहती है। और वो ये मन की स्थिति है कि वो दुखी रहना चाहती है कि मैं बार बार उसे याद करूं और दुख को फील करूं। जैसे वो इसके लिए एंजॉयमेंट बन जाता है। विदेशी बोला करते हैं एंजॉय द सोरो, कोई कोई बोलता है सोरो दुख। ऐसा हो जाता है कि उसे बार बार याद करके आत्मा के अंदर जो दुख भरा हुआ है वो रोक के निकाल देते हैं उसकी फीलिंग को, फिर याद करते हैं बार बार, क्योंकि वो सहन नहीं होता। मनोविज्ञान इसके पीछे ये है। लेकिन पास्ट के इफेक्ट को हमें वर्तमान के इफेक्ट से डिलीट कर देना है, धो देना है बिल्कुल। वर्तमान का कौन सा इफेक्ट? आज की मूल्य में भी था, कल की में भी था, मूल्यों में रोज आता है ना। तो हमें खुशी रहनी चाहिए। क्या फेसबुक के मालिक बनने वाले हैं? तो हमें खुशी रहनी चाहिए। सामने कौन बैठा है? देखो, बाबा आता है तब हमारे पास तो आता ही रहेगा। अगर बाबा के सामने बैठकर हम सुंदर विचारों में रहे, आप सब इस बार इसका अच्छा आनंद लेना। सुंदर विचार, एक तो है बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके शक्तियां लेना, दूसरा है सुंदर विचारों में रहना। जिसको जन्म जन्म बुलाया था वो सामने बैठा है। कैसा हमारा सुंदर भाग्य है जिसके दर्शनों के लिए सब तरसते हैं, वो कैसे साधारण रूप में बैठकर बात कर रहा है, हमें श्रृंगार रहा है, प्यार दे रहा है। क्या हमारा भाग्य है 3 घंटे भगवान के साथ बैठे हैं, चिंता करना। ऐसे 8-10 विचार अपने पास आप नोट कर लें पहले ही, और वहां बैठे बैठे इन विचारों से स्वयं को आनंदित करना। पास का सारा इफेक्ट धुल जाएगा, एक ही बार में धुल सकता है। इसलिए स्थिति बहुत सुंदर होती है। 3 घंटे कम नहीं होते, परम आनंद में 3 घंटे। और ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अच्छे अच्छे विचार मंदिरों से हमें मिलते ही हैं, अपने से बातें करें हम, कितने समीप आ गए हम उसके, संकल्प करें भगवान बापती का सदगुरु रूप में हमारे सामने बैठा है। अब तो स्क्रीन पर बहुत अच्छा दिखाई देता है, उस पर देखते हैं और ऐसे सुंदर विचारों से अपने को आनंदित करेंगे तो कोई भी पास्ट की गहरी छाया, बहुत गहरी चली गई है कईयों के अंदर, जो उन्हें कष्ट देती है, स्वप्नों में भी डराती है, बहुतों में डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो जन्म जन्म पाप किया है, बाबा कहा करते थे वो यमदूत बनकर सामने आते हैं, यमदूत कोई होते ही नहीं, पाप का स्वरूप दिखाई देता है। तो ये सब करेंगे तो दाना का ज्ञान बहुत एक नेचर अपनी बनाएंगे व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए और आप संस्कारों के टकराव से बचने के लिए। रामा के ज्ञान में हम जानते हैं जो कुछ एक बार हो गया वो 5000 साल में दोबारा नहीं होता। कितना सुंदर रहस्य है, फिल्मों में भी होता होगा कि फिल्म में एक सीन रिपीट नहीं होगा, फिल्म की ब्यूटी ही ये होगी कि उसमें एक सीन ऐसा नहीं बार बार आता रहे। और ये वर्ल्ड की जो फिल्म है इसकी तो सबसे ज्यादा ये ब्यूटी है कि इसमें सीन रिपीट नहीं होता। देखो कितना बड़ा विशाल ड्रामा, कितने एक्टर्स इसमें, किसी ड्रामा में तो क्या संभव ही नहीं है इतने एक्टर्स, ताकि रेस चलने वाला तो एक सीन दोबारा नहीं आता। 5000 साल से पहले वो बात आएगी नहीं, तो हम बातों को जल्दी जल्दी खत्म करते चले। रोज की जो बातें होती है ना, अपनी नेचर ऐसी सरल बनाए कि बातों में रुकेंगे नहीं, फटाफट खत्म, आई और गई, आगे बढ़े, तो वो अपना इफेक्ट नहीं छोड़ेगी। ये सरलता है बहुत अच्छी चीज। तीसरी हमारी सुंदर धारणा है समर्पण भाव, जो समर्पित हैं वो भी ध्यान दें, समर्पित वालों के लिए भी समर्पण भाव बहुत गहरा विषय है। समर्पण भाव, इसके साथ शब्द है भाव। मान लो हमारे पास कोई डिपार्टमेंट भी है, उसमें हमारे पास है मैं, मेरा, मैंपन का भाव, तो समर्पण भाव नहीं। हम अपनी सेवाओं से दूसरों को सुख नहीं देते हैं तो समर्पण भाव नहीं। हमारा व्यवहार यदि दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाता है तो हमें क्या नुकसान होगा? बोलो, कई लोग कह देते हैं बड़े अहम वाले होते हैं ना, तुम्हारी दुआओं की हमें जरूरत नहीं, अपनी दुआएं अपने पास रखो। सुन देखे होंगे ना आपने ऐसे मारा थे जो कहे तुम्हारी दुआओं कोई जरूरत नहीं, सुधरो, ऐसे कहेंगे सुधरो, दूसरों को सुधारने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, अपने को सुधारने की इच्छा ये श्रेष्ठ आत्माओं में ही उत्पन्न होती है।
श्रेष्ठ खजाना दुआ,
हाँ, संगम युग का श्रेष्ठ खजाना ही दुआ है। तो हम अपने व्यवहार से दूसरों के संकल्प चलवाते हैं बार बार, कभी कुछ हुआ वो अलग बात, तो हम निर्बल होते जाएंगे, डबल नुकसान, हमारा व्यवहार हमारी गिरावट का कारण, दूसरे के व्यर्थ संकल्प भी हमारी गिरावट का सूक्ष्म कारण बनेंगे। तो जो आत्माएं अपने गलत व्यवहार से दूसरों को डिस्टर्ब करती हैं, वो दिनों दिन कमजोर होती ही जाएगी। ठीक है, ये सभी ध्यान देंगे, समर्पण भाव माना। और सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरे लिए, मेरा हर कर तेरे लिए। हर गोविंद तुम भी देख लो, सारे कैमरे कंप्यूटर सब माल तेरा, मेरा नहीं। मैं हर गोविंद तो इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद माल ज्यादा है, तो जिनके बाद थोड़ा थोड़ा है वो भी ध्यान दो। तले में जो कपड़े रखे हैं पहने तो हमें हैं, पर यथेची भी प्रभु की। एक टैंकर में मैं गया, मैंने देखा कि बाबा के कमरे में बाबा के चित्र के आगे उन्होंने एक अटैची एक बैग और कुछ चीजें रखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या बाबा कमरे के आगे ये रख लिया, बाबा के चित्र के बिल्कुल आगे बाहर में और बिल्कुल आगे। कहा ये आपको सौगात देनी है तो बाबा को अर्पित कर दी है पहले, ये बाबा आपको दे। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। देखो उसने बाबा को दो महीने तीन महीने थी उन्होंने ये रखा, फिर और कुछ कुछ भी बाबा के आगे रखती थी। तो हम भी एक नियम कर ले, जो ग्रस्त में है उनके पास पैसा आया सैलरी मिली बाबा के आगे रख दे, ये तुम्हारी, तुम हमारी पालना कर रहे हो, तुम्हारी धन से हमारी पालना हो रही है, तो बहुत अलौकिकता रहेगी, बहुत सुख मिलेगा। तो हमारा हर कर्म भी बाबा के लिए। तो सभी तीन धारणाओं से क्या फायदा अनुभव होगा? मन की गति ही धीमी रहेगी, हमें जड़ को काटना नहीं पड़ेगा, हमारी संघर्ष की स्थिति युद्ध की स्थिति समाप्त होती जाएगी। ये तीन अभ्यास बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा सभी ध्यान दें अपनी अपनी स्थिति पर, कोई भी मनोविकास, आज बाबा ने कहा तुम शिव शक्तियां हो, डबल अहिंसक हो, किसी भी विकार वश भी किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते, दुख देने को बाबा तो हिंसा ही कहता है। तो सब चेक करें, किसी भी विकार बस व्यर्थ चलता है उसको ठीक करना है, वो बाबा ने ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा। मेरे अनुभव में एक चीज बहुत सुंदर है, तीन धारणाओं के अलावा अब मैंने भी एक नियम पक्का कर दिया है, जब से यहां भी कराया था आपको याद हो, तीन बार पांच स्वरूपों का अभ्यास, सवेरे श्याम और एक बार बीच में, एक बार में कई बार कर सकते हैं। ये अभ्यास हमारे चित्त को आनंदित करता है, आप इसको अपने रूटीन से जोड़ दें, जहां भी आप हैं तो मन आनंदित रहेगा, और जब मन आनंदित रहता है तो सबको ये मालूम होना चाहिए लौकिक कार्य भी निर्विघ्न और सफल होते हैं। ये बात केवल अलौकिक नहीं है, मन की शक्तियां, मन की स्थिति जीवन के हर कार्य पर, हर स्थिति परिस्थिति पर प्रभाव डालती है। कोई भी, कोई स्टूडेंट हो उस पर भी पड़ेगा, बिजनेस, नौकरी, घर की समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, बीमारियां, संस्कार, स्वप्न, सब पे असर आएगा। ट्राई करके देख सकते हैं, एक हफ्ते के लिए सोने से पहले तीन बार पांच स्वरूपों का अभ्यास करके सो जाएं, दस मिनट लगाएंगे, अनुभव हो जाएगा नींद सतुप्रधान आनंदकारी, लगेगा नींद नींद नहीं है, योग युक्त थे हम। तो सब इस पर भी बहुत ध्यान देंगे। अब बात है इम्पोर्टेंट, ऐसे इम्पोर्टेंट भय, संसार में भय बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, विनाशकाल तो मनुष्य को भयभीत करने वाला ही होगा, सब कुछ भयभीत। जैसा आप देख रहे होंगे समाचारों में, भारत में भ्रष्टाचार का नाम रोशन होता जा रहा है, हो रहा है ना, कि बड़े बड़े सारे लोग भ्रष्टाचारी, वो तो खैर है ही, सब जानते हैं, पर मुझे तो कुछ चीजें वो पढ़ के आश्चर्य हुआ कि भारत वालों का स्विस बैंक में इतना पैसा है, इतना अथाह है। लिखा उसने बहुत अच्छा चिंतक था, मैंने उसकी कटिंग भी रख ली, कि इतना पैसा है कि 60 साल तक हर भारतीय को 2000 रुपए प्रति मास दिया जा सके, और अगर उसको गांव में मार दिया जाए तो एक एक गांव को पता नहीं कितने कितने करोड़ की खेती मिल जाएंगे, और बिजली इतने साल तक फ्री दी जा सकती है सबको। तो लिखा था भारत के लोग तो साहूकार हैं, केवल भारत ही गरीब है। लोग बहुत साहूकार, बहुत अच्छे कमेंट्स मैंने इसलिए रख लिया कि मैं इस पर कोई देखना चाहता हूँ, अच्छा जो लोग नहीं लिखते, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने का ऊपरी साधन अपनाया जा रहा है ना। पेड़ बढ़ गया, ऊपर के पत्ते काट लो, पानी देते रहो। तो उसने बहुत अच्छा लिखा कि छोटे छोटे लोगों को लोग पकड़ते रहते हैं कि चपरासी ने 500 रुपए की रिश्वत ले ली, पकड़ो उसे। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि सारे बड़े IAS ऑफिसर और सारे मंत्री, पकड़ने वाले वही, पकड़वाने वाले भी नहीं, तो चोर चोर को कैसे बदलेगा। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म हो नहीं सकता। कौन कदम उठाए, सारे तो वही हैं। तो बाबा ने क्या सिखाया, जब तक मनुष्य को भ्रष्टाचारी न बनाया जाए, भ्रष्टाचार खत्म होगा ही नहीं। ये है बहुत सुंदर चिंतन की बात। इस पे मुझे लिखना है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का यही एक तरीका है, बाकी तो ऊपर की टहनियां काटी जा रही हैं और वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हम सभी अपने भय को निकालें, भय को निकालेंगे, किसी भी तरह का भय हमारे अंदर हो। कुछ सूक्ष्म भय, कुछ मोटे भय। सूक्ष्म भय क्या होते हैं, निंदा का भय, फेल होने का भय, या मार्ग में चल पाएंगे या नहीं इसका भय। सुनाओ, भय भय भय, रूप सुनाए भय का,
इंसल्ट होने का भय,
इंसल्ट होने का भय, इविल सोल्स का भय। ये तो बड़े भय हो गए, बड़े भी बहुत है, वो तो बहुत हो गए हैं आजकल।
कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब वो करने के पहले ही सोचते हैं कि
हाँ असफल होने का भय। कर्म के बारे में भी यही है, कई लोग कर्म से पहले उसके परिणाम के बारे में इतना सोच लेते हैं कि जब तक वो कर्म करें उनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, इतना सोच लेते हैं। केवल अभी चिंतन में ही होता है कर्म और परिणाम, और दोनों ही फेल हो जाए तो न कर्म न परिणाम, तो इससे मनुष्य की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। हम अपने अंदर छुपे हुए भय को देखें, संकल्पों की शक्ति से स्वयं शक्ति बने और उन संकल्पों को हटाएं भी, हटाएं। हमें याद है अपनी बातें, डर तो होता है, गांव में दो चार बार डाकू आए, डाकू आए तो दो ऊपर खड़े बंदूकें चला रहे और किसी को नहीं आने देते। हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, डर रहे घर में, बिल्कुल डर रहे। देखो लोग बहादुर भी कैसे होते हैं। हमारे एक ग्रैंड फादर थे, छह भाई थे वो, एक उनमें जो सबसे छोटे थे वो जरा ज्यादा बहादुर थे। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जिधर गोली चल रही थी ना उनके सामने दौड़ लगाई थी, लो मारो गोली हम आ गए, और फटाफट वो पहुंच गए उस घर में, मुश्किल से 3 मिनट में पहुंच गए। और अंदर वालों ने कुंडा खोल दिया और वो अंदर चले गए, तो सारे जो डाकू आए थे ना दीवारों से चढ़ चढ़ के भाग गए। अंदर थे डाकू भी, छलांग लगाई, सिंगल स्टोरी रूम होते गांव में कर सकता हूँ। हम लोग डर रहे हैं, छोटे बच्चे ना गांव में एकदम डर रहे, सारे बच्चे डर गए, मेरे भी कोई नहीं उठा। तो क्या होता है इसे? ये भय सबकॉन्शियस माइंड में समा जाता है। हम अब कोशिश करेंगे समाये हुए भय को भी पावरफुल संकल्पों से खत्म करें, और अब कोई बात हमें भयभीत न करे, ऐसा अपने से बात करें। जिस तरह का भी भय किसी के अंदर हो उसके अनुसार पावरफुल संकल्प मन में रखकर बहुत अच्छे ठोस पावर हम क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास कितने दिन है बाबा के आने के, चार दिन की प्लानिंग। कल पहला दिन सबको करना है बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल जो आज मुरली में था ऐसे ऐसे दीदी हो जाते हैं कई बच्चे मस्त। कल ऐसे दीदी पंथ का अभ्यास, उसमें 5 स्वरूपों को भी जोड़ लेंगे, बिल्कुल मस्त होने का अनुभव करना है। कई बार करेंगे सब दिन, मस्त होने का अनुभव एक बार करने से नहीं होता, सारा दिन करते करते श्याम को श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी, डीप साइलेंस हो जाएगी, तो मैं आत्मा स्तन में अवतार हूँ, अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, मैं भ्रकुटि सिंहासन पर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, देह की मालिक हूँ, बिल्कुल देह से न्यारे बन के फीलिंग, ये देह मेरा वस्त्र है। मैंने सुनाई थी ना पिछली बार बाबा की बात, बाबा ऑपरेशन के लिए जा रहे थे बॉम्बे में, तो सब जो विदाई दे रहे थे वो जरा उदास थे, बाबा तो उदास होते नहीं, वो तो ब्रह्मा थे। बाबा ने कहा अरे बच्चे तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं तो ये कपड़ा दर्जी के फेंक रहा हूँ, सिलाई होके आ जाएगा। देखो कितनी सुंदर बात, कितना अच्छा अभ्यास हो गया था, वस्त्र है ना, फटा है दर्जी के पास बैठा हूँ, ऑपरेशन माना दर्जी सिलाई डॉक्टर को दर्जी बनाते तो आज ऐसा अभ्यास हम करेंगे। दूसरा दिन बोलो इंद्रेश्वरी क्या करेंगे दूसरे दिन अभ्यास, आने और जाने का अभ्यास करेंगे, फरिश्ते रूप से भी करें आत्मिक रूप से भी, जाएंगे परम धाम और सुख समर्थन, और सुख समर्थन में जाके फील करेंगे बाबा की हजार भुजाएं मेरे सिर पर हैं, फिर वापिस देखने, ये दिल बहुत अच्छे अनुभव कराती है। योग की सफलता में सबको याद रखना है, कुछ विशेष दृष को प्रयास करेंगे, लक्ष्य लेंगे, आधा घंटा बैठ रहे हैं तो ये करते हैं तो योग ज्यादा सफल होगा, दृल बाबा के पास जाना, टच करना, वापिस आना। तीसरा दिन पावरफुल, अब दोनों दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और लक्ष्य बना ले मुझे सकाश देनी है। जब हम ये अभ्यास करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमें याद रखना है प्रकृति से आत्मा से और अंग अंग से शक्तियां चारों ओर फैलती ही हैं। उसको यदि हम फोकस कर देते हैं कि हमारे सामने सारा विश्व है, मुझसे केवल निकल कर विश्व आ रही है, तो बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल गहरा अनुभव होगा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सकार देनी है और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, ये अभ्यास सभी को बहुत अच्छा लगता ही है। ऊपर से बाबा धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, उनको हम देखेंगे और छत्र के रूप आगे सिर के ऊपर। बाबा का दिन कौन सा अभ्यास बोलो, वही हर बार वाला, मैं संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ क्योंकि आज भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। सबको अच्छे अनुभव हो गए होंगे इसके, फिर देखेंगे बाबा आ रहे हैं, सवेरे से ही फील करेंगे और आगे आंखों के सामने ज्ञान सूर्य के रूप में देखेंगे, उनकी किरणें चेहरे पर पड़ रही है। तो अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, चार दिन हमारी तैयारी के हैं और बाबा के दिन स्वयं से बातें करते हुए स्वयं को आनंदित रखेंगे। अब हम ये भी अभ्यास करेंगे, ट्यून बजाएंगे लाल लाइट, चलो सभी ऊपर से बाबा को देखेंगे सर्वशक्तिवान। बुद्धि को स्थिर करेंगे और बाबा को प्यार से निमंत्रण देंगे, सर्व शक्तिमान नीचे उतरने लगते हैं, अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। धीरे धीरे
बुद्ध के नेत्र से देखते चले धीरे धीरे नीचे उनकी शक्तियां आगे सिर के ऊपर सुंदर दिव्य छत्र छाया बने